एकाग्र देह की और मन की सभी हलचल से परे, जैसे अड़िक पर्वत मन शांत स्थिर वातावरण में एक अव्यक्त प्रवाह असीम शांति स्थूल देह के पिंड में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति मुझ आत्मा का प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है। जगत की यात्रा जन्म जन्म बाह्य मुक्ता में गुजारे, जन्म जन्म में आत्मा भटकी, अब समय अंतर जगत की यात्रा का वो आकाश जो बाहर है अनंत है। असीम है पर मेरे भीतर भी एक आकाश है। जो बहुआयामी असीम है। उस आकाश से परे वो जो अंतर आकाश है, उसकी यात्रा एक अलौकिक यात्रा। मैं आत्मा स्वयं को तैयार करती हूं, उस दिव्य यात्रा के लिए जिसमें नितांत मैं अकेला हूं। यह यात्रा अंतर जगत की यात्रा है। ओम शांति। गुफाओं में और कंदराओं में एक अज्ञात सी छोटी सी गुफा थी, एक ऐसी गुफा जहां कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंची थी। अनंत काल से, अनंत अनंत काल से अंधेरे में थी, छिपी हुई थी। सूरज की किरणें रोज आती और गुफा के दरवाजे पर दस्तक देती, क्या मैं आऊं? पर गुफा को विश्वास न था, क्योंकि अंधेरे की आदत थी। सूरज की किरणें उससे कहती कि बाहर देखो रोशनी है, बाहर देखो फूल खिले हैं, बाहर देखो कैसी हरियाली है। परंतु जिसे अंधेरे की आदत है, जो लंबा समय अंधेरे में रहा है, अगर उसे कोई ऐसे आके कहता है कि उजाला भी है, तो उसे विश्वास नहीं होता। जिसे दुख सहने की आदत है, उसे दुखी अच्छा लगने लगता है। दुख की ही आदत पड़ जाती है। जो निराशा में जीता है, उसे निराशा की आदत पड़ जाती है। और यदि कोई सुख का संदेश लाए, सहन हो नहीं पाता। कैसा विचित्र स्वभाव है। चाहता है दुख से मुक्त हो जाए, परंतु स्वयं स्वयं को दुखी करता है और उसी में जीता है। सूरज ने फिर कहा, आकर तो देखो कैसा है ये समा। परंतु उस गुफा को कभी विश्वास ही नहीं हुआ, अपने ही अंधकार में रही। पर एक दिन उसके मन में आया, क्यों ना मैं भी देखूं प्रकाश कैसे होता है, रोशनी कैसी होती है, क्या रोशनी होती भी है। और उसने दरवाजा खोला और पहली बार उस गुफा ने रोशनी को जाना, प्रकाश को पहचाना। और वो सूरज से कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अपने दुखों के लिए जिम्मेवार भी व्यक्ति दूसरों को ही मानता है कि तुमने पहले बताना चाहिए था, जबकि दस्तक तो सूरज कब से दे रहा था। बहुत खुशी हुई जब उसने पहली बार सूरज को जाना, प्रकाश को जाना। और उसने सूरज से कहा कि मैंने तुमको जाना, पर क्या तुम्हें अंधेरे की कोई खबर है? जैसे मैंने प्रकाश को जाना, तुम भी मेरे अंधेरे को जान लो, आओ मेरे भीतर। और वो गुफा सूरज को अपने अंदर बुलाती है। सूरज भी कहता है कि मैंने कभी भी प्रकाश अंधेरे को नहीं जाना, क्या है मैं भी तो जानूं। जो चीज़ें हमें नहीं पता उसे जानने की इच्छा होती है, उसके प्रति कौतूहल होता है। जो गुण हम में नहीं किसी और में है वो व्यक्ति आकर्षित करता है। सूरज की किरणें गुफा में प्रवेश करती है, परंतु अंधकार तो है ही नहीं। सूरज ने बहुत ढूंढा परंतु अंधेरा कहीं ना मिला। और कैसे मिलता, क्योंकि अंधेरा तो नाम ही अभाव का है। किसका अभाव? प्रकाश का अभाव। गुफा ने पूछा, कैसा था मेरा अंधेरा? सूरज ने कहा, अंधेरा था ही नहीं। जहां मैं हूं वहां अंधेरा कैसा? मेरी अनुपस्थिति को ही अंधेरा कहा जाता है। उपस्थिति और अनुपस्थिति, भाव और अभाव एक साथ नहीं हो सकते। यदि अंतर्मन में अंधेरा है तो जरूर सूरज की कमी है। यदि चेतना में दुख है कहीं, कोई विषाद, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई विकार है, तो जरूर प्रकाश की कमी है। ज्ञान और वासना एक साथ नहीं जी सकते। यदि तृष्णाओं से भरा चित्त है, यदि वासनाएं उद्वेलित कर रही है मन को, यदि विकारों से आंदोलन हो रहा है चेतना में, तो ज्ञान की अब भी कमी है। ज्ञान का वो प्रवाह, ज्ञान का वो सूरज अब भी अंदर नहीं है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि वो सूरज जो आसमान में है, कभी वो सूरज अस्त ही ना हो तो अंधेरा कभी होगा ही नहीं। और यदि आत्मा में ज्ञान का सूरज निरंतर हो तो आत्मा में भी कभी भी अंधेरा नहीं होगा। हमारे अंतर आकाश में क्या है, सूरज है या अंधेरा? तो आज हम इस विषय की, अगर हम कहें चर्चा या चिंतन, तो चिंतन और चर्चा केवल बौद्धिक है। जब तक अध्यात्म शरीर के तल पर अनुभव ना हो, वो केवल चिंतन मात्र है। कितना गहरा राज है इस वाक्य में। जब तक अध्यात्म देह के तल पर अनुभव ना हो, तब तक वो केवल बुद्धि का विलास है, वाणी का विलास है, प्रवचन मात्र है, भक्ति का रस मात्र है। उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अध्यात्म का हर अनुभव यहां अनुभव हो, शरीर पर। कैसे? राज है, गहरा राज है। तो आज हम प्रवेश करेंगे अपने ही अंदर, अपने ही अंतर आकाश में। इस आकाश में उड़ान लेंगे, क्योंकि वहां क्या है पता नहीं, और डर लगता है अंदर जाने से। अब सबकी भट्टी का आज का पहला दिन है, गहरा ऑपरेशन करना है हर एक को अपना, डीप सर्जिकल स्ट्राइक। और इस ऑपरेशन के दो नियम है। पहला, संपूर्ण मौन। आपस में बात करते हुए कोई भट्टी, कोई तपस्या नहीं हो सकती। जो आज दिन भर भी बोलते रहे, वो अभी से इसी क्लास में बैठे बैठे ही संकल्प करेंगे, वाणी चुप हो जाए। अब बोलेंगे, पर कब बोलेंगे? भट्टी कब पूरी हो रही है? 19 तारीख सुबह 8 बजे। अपने मौन को यहीं पर तोड़ कर जाएंगे। संसार में जाके मौन को नहीं तोड़ना है, तो लौकिक बातें निकलेगी, इसी वायुमंडल में जिस जिनके साथ भट्टी की है, अभी केवल उनके चेहरे देखना है पर बात नहीं करनी है किसी से भी नहीं, जरा भी नहीं। जो अनुभव होंगे वो अपने अंदर ही रख देना है और किसी भी चीज का कोई भी वर्णन नहीं, तो ही कुछ मिलेगा। नहीं तो आए भट्टिया की, योग किया, क्लासेस सुनी, क्लासेस बहुत अच्छी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था, आराम किया और चले गए। ये मधुबन की तपस्या भूमि है। अगर यहां आए और अपरिवर्तित होकर ही चले गए, और यहां आए और वो ट्रांसफॉर्मेशन लेस भट्टी हो गई, तो बोझ होगा। मधुबन में तोड़ी हुई एक एक रोटी का हिसाब देना होगा। जो अब तक भी बोल रहे हैं सुबह से, हाँ, जो व्यवस्थापक है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन्हें सबको संभालना है, वो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सेवा के रीति से, बाकियों को बोलने का कोई काम ही नहीं है। पूर्ण मौन, आर्य मौन, संपूर्ण मौन, जब तक ऊर्जा व्यर्थ जा रही है बोल से, अंतर्मुखता कैसे आएगी? ये सबसे पहला काम। दूसरा, जिनका मोबाइल अभी तक भी स्विच ऑफ नहीं हुआ है, स्विच ऑफ, साइलेंट नहीं, वाइब्रेट नहीं, बंद, पूरा बंद, उसको सीधा 8 बजे खोलना, चालू करना 19 तारीख को, उसको बैग में डाल के बंद कर दो। जिससे जो बात करनी है इस क्लास के बाद 10-15 मिनट है, उसमें बात कर लेंगे, बस। बात करते करते तपस्या नहीं हो सकती, ये 2 चीजें। और इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, और अपना कमरा, क्लासरूम, मुरली क्लास, डाइनिंग, बाबा का कमरा, बस। इसके अतिरिक्त ना किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, ना कुछ परचेसिंग करेंगे, और हो सके तो कुछ भी पढ़ना नहीं है, दूसरा कुछ। पढ़ने के लिए बहुत समय है, बाद में पढ़ना। यहां अनुभव के लिए आए हैं। लिखने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है, सारे पेन पेंसिल डायरी एक तरफ, अनुभव, सारा मटेरियल, सारी क्लासेस, सारे ऑडियोज, इंटरनेट पर बाढ़ आई है ज्ञान की, बाद में कभी भी मिल सकती है। मीडिया से सब कुछ खरीदा जा सकता है, एक्सेप्ट एक्सपीरियंस, इतना सस्ता नहीं है अनुभव कि सोशल मीडिया से मिल जाए, त्याग मांगता है। जब तक डिजिटल डिस्टर्बेंस है तब तक तपस्या नहीं हो सकती, और नियति ने ये अवसर दिया है, भगवान की अनुकंपा हुई है जो यहां तक मुझे पहुंचाया, जबकि संसार की हालत इतनी विकराल है, ऐसे निसर्ग रम्य, ऐसे पवित्र, ऐसे प्रांजल स्थान पर हमें पहुंचाया, और ऐसा मौका दिया कि जहां मौन रखा जा सकता है सहज, जहां चिंतन किया जा सकता है सहज, जहां चेतना को ऐसी उड़ाने भराई जा सकती है सहज। और यहां आने के बाद भी इससे बात, उससे बात, इससे मैसेज, इसको मैसेज, उसको मैसेज, तो यहां आने का पर्पज ही खत्म हो जाएगा। कौन कौन करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे? आर्य मौन, सिग्नल से भी बात नहीं करेंगे, केवल किसी का चेहरा देखना, बस, बात कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो कम्युनिकेशन, एंड मोबाइल ऑफ, नो इंटरनेट, नो यूट्यूब, नो व्हाट्सएप, तीनों को ही हॉलिडे, और कहीं नहीं जाएंगे इस कैंपस से। हॉस्पिटल जाऊं, इसको मिलूं, उस डिपार्टमेंट में मिलूं, टोली में जाऊं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, सब लास्ट डे। जिस दिन भट्टी पूरी होगी उस दिन इस मौन को तोड़ना, उस दिन मोबाइल बैग से बाहर निकलेगा, उस दिन जिससे बात करनी है करना, परंतु तब तक मन को आदेश दे देंगे ये सब बाहर, क्योंकि काम बहुत सारा है जो करना है, गहरा काम करना है। महात्मा बुद्ध एक दिन आए और अपने साथ एक रेशम का रुमाल लेकर आए, हजारों बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा ये क्या किया है इन्होंने, क्या कोई जादू का करतब दिखाने वाले हैं, क्योंकि रुमाल तो कोई जादूगर ही लाता है। उस रुमाल पर महात्मा बुद्ध बैठे, उन्होंने गांठे बांधी पांच, और भिक्षुओं से पूछा, हे भिक्षु बताओ, जो पहले का रुमाल था और ये जो गांठ वाला रुमाल है, क्या एक ही है या बदल गया? क्या कहेंगे? एक ही है रुमाल, रुमाल तो एक ही है, स्वभाव से तो एक ही है, परंतु बदल गया है। इस रुमाल में गांठे हैं, वैसी चेतना में भी गांठे पड़ी है। जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई है, इतने सारे संस्कारों की गांठे बांधी गई है, कैसे खोले इन गांठों को? फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोलना चाहता हूं, तो वो उस रुमाल को खींचने लगे। भिक्षु कहने लगे, ये क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा, मैं गांठों को खोल रहा हूं। कैसे खोले? खींचकर? क्या खुलेगी? ना। क्या करना होगा? गांठों को पहले जानना होगा, ये गांठे किस तरह बांधी गई है, ये काम का संस्कार प्रकट कहां से हुआ है, शुरुआत कहां से थी, गंगोत्री कहां है, इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कहां से निकल पड़ा है ये ईर्ष्या जो पीछा कर रही है, ये काम वासना का अंश जो पवित्रता का सारा ज्ञान होते हुए भी अचानक से उभर आता है, जरूर कहीं से तो चालू हुआ होगा। पहले विकारों को जानना, उस गांठ को जानना, और उसे उसी रीति से खोलना जिस रीति से वो बांधी गई है, परंतु ये गांठे अभी नहीं बांधी गई है, पहले बांधी गई है, तो क्या करना पड़ेगा? टाइम ट्रैवल, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे लौटना पड़ेगा। बड़ा भारी काम है, बहुत सूक्ष्म काम है। चेतन मन को शांत करना होगा, तब कहीं अवचेतन में प्रवेश किया जा सकता है, क्योंकि विकार चेतन में नहीं है, अवचेतन में छिपे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए वाइसेस को निकालना, सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई कॉम्प्लेक्सेस, निगेटिविटी को निकालना, अपराध भाव को निकालना, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां तक तो कुछ भी नहीं पहुंचता, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं, सारा ज्ञान, योग, मुरली, तपस्या, अमृत वेला, दिन भर का की सेवाएं, नुमा शाम का योग, मुरली लिखना, मुरली पढ़ना, मुरली सुनाना, क्लास करना, क्लास कराना, ये सब चेतन पर हो रहा है। इसमें का कुछ भी वहां नहीं पहुंच रहा है जहां विकार छिपे हुए है, इसलिए वो विकार जस का तस है, जरा भी हिला नहीं है, टच ही नहीं हुआ है उसको, तो क्योंकि हम सब कुछ जो कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर कर रहे हैं, कुछ और करना पड़ेगा। ये गांठे खोलनी है, और तीन दिन मिले हैं, कितना बड़ा काम है, इतने बड़े कार्य के लिए ये तीन दिन बहुत कम समय है, परंतु हाँ, मन की एक तैयारी तो की जा सकती है, उस चेतन मन को शांत तो किया जा सकता है, ताकि दिखाई पड़े क्या है वहां, हाँ ये है। और जिसने अपने विकारों को देख लिया वो उसे जीत भी लेगा, अभी हमने देखा ही नहीं है क्योंकि वो छिपे हुए है, वहां सूरज की कोई किरण नहीं है, सूक्ष्म काम है। साधना भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होती जाए तब कुछ हो सकता है, तब दिखाई देने लगेगा। तो आज का हमारा विषय है अंतर आकाश में उड़ान। उस आकाश में उड़ान के लिए एक पंछी को बहुत सारी बातें चाहिए। तो आज की इस क्लास में ऐसी हम 12 बातें देखेंगे जो किसी को उड़ने के लिए आवश्यक है। पहली, पंख। उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख चाहिए। बिना पंखों के उड़ान नहीं जा सकता। और हम तो पुरुषार्थ कर रहे अंतर आकाश में, मैक्रोकॉजम एंड माइक्रोकॉजम। ये जो अंतर आकाश है, इस आकाश से बहुत बहुत बड़ा है। पता नहीं इसमें क्या क्या है। जन जन की वासना है, जन जन के विकार, जन जन की भोग की कामनाएं छिपी हुई है। इसीलिए कहा यह बहुत गहरा ऑपरेशन है जो यहां आप करने आए हैं। पता नहीं कहां कब चीरा लग जाए और कौन सा पीप, कौन सा मवाद बाहर निकल जाए। हमें तो पता ही नहीं था ये भी था हमारे अंदर। हम तो सोच रहे थे हम अखंड ब्रह्मचारी है, ये कहां से काम निकल पड़ा? ये कहां से देह की आसक्ति और देह को देखने की और देह को स्पर्श करने की अभिप्सा इसमें अब भी छिपी थी? हम तो सोच रहे थे हमारा मोह ही नहीं है, पर चीरा लगा और निकला। और हरेक को यह काम अपना करना है। इसमें दूसरे का क्या काम, दूसरों को क्या देखना, किसी से क्या संबंध मेरा? मेरा यह अपना काम है और गहरा काम है और मुझे ही करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, चिंतन थोड़ा, किसी का चिंतन, किसी का मनन, मुरली की कुछ बातें प्रेरणा बन सकती है, थोड़ी मदद कर सकती है, पर काम तो मुझे ही करना है। और हाँ, जो यहां केवल और केवल तपस्या करने नहीं परंतु पिकनिक करने आए हैं और बातचीत करने आए हैं, खेलकूद करने आए हैं, थोड़ा चेंज करने के लिए आए हैं, उनसे इतना नम्र निवेदन है कि वो कम से कम दूसरा जो आप काम कर रहा है मौन में, उसके मौन को डिस्टर्ब ना करे। यदि कोई दिख रहा है ये चुप है, उसे चुप रहने दे। क्योंकि ऑपरेशन में कोई अंदर बाहर वाले रिश्तेदार आते हैं कि अंदर? नॉट अलाउड। इसलिए हमारे वजह से किसी की तपस्या भंग ना हो, हम कोई टॉपिक ना छेड़ दे जिसकी चर्चा हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जितनी टॉपिक इंटरेस्टिंग होगी, 31 दिसंबर 2008, उतना व्यर्थ उस समाचार में होगा। सारा डिस्कशन, सारे टॉपिक्स बाजू में। तो सबसे पहला पंख है मौन और दूसरा पंख अंतर्मुक्ता, अंदर लौट जाना है। अब तक का सारा जीवन, इवन ब्राह्मण जीवन भी बाह्य मुक्ता में ही जा रहा है। सेवा की बाह्य मुक्ता, ज्ञान की बाह्य मुक्ता, चिंतन की बाह्य मुक्ता, ये भी सब बाह्यमुखी होकर हो रहा है। अंतर्मुखी नहीं बनाया है इसने, ज्यादा बाह्यमुखी बना दिया है। शायद कहीं समझ में अंतर था। अंतर्मुखी अर्थात खुद को देखना। बचपन से लेकर अब तक का जीवन कैसा था? ज्ञान में आए तब तक अब तक का जीवन क्या था? और एक बात, स्वयं को देखने के लिए योग में आंखें खुली रहती है, परंतु जब खुद को देखना है तो आंखें बंद होगी। क्योंकि जहां आंखें जाती है मन वहां वहां भागता है। एक साधना है योग की जो राजयोग है, एक दूसरी भी साधना है जिसमें हम स्थिर बैठ जाते हैं, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, पेन पेंसिल डायरी कुछ भी नहीं, जहां हाथ रख दिया बस वहीं, जहां पैर रख दिया बस वहीं, जरा भी हलचल नहीं होगी, आंखें बंद होगी। इसे कहा जाता है अधिष्ठान अर्थात शक्तिशाली संकल्प। और इसका अभ्यास रोज करना है, करते करते इस अभ्यास को 1 घंटे तक लेके जाना है, जिसमें हम इतने अचल बैठे, इतने अचल कि जैसे कोई योगी पर्वत पर बैठा है, एकदम अचल, उंगली ना हिले, ट्रिपल लॉक, आंखें बंद, हाथ बंद, पैर बंद, जहां पैर रख दिया बस रख दिया। यह अभ्यास अपने घरों में, सेंटरों में, जब जब समय मिले अपने कमरे में बैठकर करना है। अलार्म लगा के रख देना है 20 मिनट, जब तक 20 मिनट नहीं पूरे होंगे हम उठेंगे ही नहीं, इतना शक्तिशाली, सभी स्थिर, आंखें बंद स्वयं को देखेंगे। ये जो अनित्य शरीर है, बिना इसको जाने, बिना इसकी वास्तविकता को जाने, आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। चालू करेंगे इस शरीर का अवलोकन, सिर के सिरे से पांव तक, क्या हो रहा है इसमें। मन को घुमाएंगे शरीर से, सबसे पहले चेहरा, किस तरह की संवेदनाएं, सेंसेशन शरीर पर है, चेहरे पर है, तटस्थ भाव से देखेंगे। संपूर्ण दायां हाथ, क्या हो रहा है इसमें, कंपन है, भारीपन है, निस्संग भाव, छाती, पेट, मन को गुजारेंगे। बाया हाथ, कौन सी संवेदनाएं हैं, निस्संग भाव, साक्षी भाव, पीठ का हिस्सा, कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन, दाया पैर, घुटना, पिंडली, देखते जाएंगे क्या हो रहा है। बाया पैर ऊपर से नीचे तक, अंग अंग में कोई ना कोई संवेदना है, कहीं सुखद है, कहीं दुखद, कहीं स्पष्ट, कहीं अस्पष्ट, कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी, कहीं खुजली हो रही है, कहीं पैर सुन हो रहा है, तटस्थ। शरीर में प्रकंपन ही प्रकंपन अनुभव करेंगे, न सुखद के प्रति राग है, न दुखद के प्रति द्वेष, समता भाव। शरीर के तल पर जो कुछ प्रकट हो रहा है, उनका संबंध अवचेतन से, उत्पात और लय, उत्पात और लय। अभी अभी कहीं दर्द है, थोड़े ही क्षण में वो नष्ट हो रहा है। शरीर पर कपड़ों का स्पर्श, उत्पात और लय, उत्पात और लय। पुनः सिर के सिरे पर आएंगे, शरीर के जो हिस्से छूट गए थे, जो मूर्छित थे, अब उस अंग को देखेंगे। ऊपर से नीचे तक एक अंग भी ना छूटने पाए, प्रतिपल कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है। स्कैनिंग द कंप्लीट बॉडी फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, एक साथ चेहरे को देखेंगे, दोनों कंधों को, छाती को, पेट को, पैरों को, तटस्थ भाव, समता का भाव। प्रवेश करना है मुझे चेतना के उस अंतराकाश में जो गहनतम है, अज्ञात है। मौन और अंतर्मुक्ता के पंख लिए मैं आत्म पंछी उड़ रहा हूं उस अंतर आकाश में। ओम शांति। तो सबसे पहली बात पंख, दूसरा पंछी तभी उड़ सकता है जब उसके पाओ में कोई बेड़िया ना हो, और ये यात्रा तो अंतर जगत की यात्रा है। यदि हमारे पाओ में बेड़िया है तो हम नहीं उड़ पाएंगे। सबसे पहले अपने विकारों को डायग्नोसिस खुद करना है। जिसे हम मोह कह रहे हैं हो सकता है वो काम का अंश है। इसलिए एक अभ्यास अध्यात्म में सिखाया जाता है, साक्षी भाव में, माइंडफुलनेस। मन में इस समय क्या प्रकट हो रहा है, और मन में जो प्रकट होता है वो शरीर के तल पर प्रकट होता है। मन में विकार तो श्वास की गति बढ़ जाती है, मन में विकार तो शरीर में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है। यदि उन उत्तेजनाओं को जो शरीर पर प्रकट हो रही है उनको साक्षी भाव से देखा जाए तो हम उन विकारों को भी देख सकते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म और बड़ा गहरा अभ्यास है। इसलिए कहा कि हर दिन दोपहर को हो सके तो 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, या जब भी कमरे में हो इसी मुद्रा में बैठ जाना है, अचल, हिलना ही नहीं है, और अपने देह को देखते जाना ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। एक समय आएगा कि केवल तरंगे ही तरंगे दिखाई देने लगेगी, यह शरीर कैसा नश्वर है वो दिखाई देने लगेगा, और फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, वो प्रतीति होगी, अनुभव होगा। और जैसे अनुभव भूलता नहीं है, हम जो कुछ करते हैं सब भूल जाता है, क्योंकि केवल मन की कल्पनाएं हैं। मैं आत्मा परमधाम में हूं, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूं, मैं आत्मा सतयुग में हूं, मैं आत्मा फरिश्ता हूं, बुद्धि विलास घुमा रहे हैं मन को, परंतु शरीर के तलों पर इसका अनुभव नहीं हो रहा है। दादियों ने जो अभ्यास किया था उसका अनुभव उनको गहरा था, क्योंकि वो उसमें देह इन्वॉल्व था। बाबा ने ड्रिल कराई थी, लेट जाओ, ये मर चुकी है, मुर्दा, सतयुग के ड्रेस पहने। वो ड्रेस पहने से फील आती, क्यों लोग राजस्थान में आते हैं, माउंट में आते हैं, नकी के वहां पर राजस्थानी ड्रेस पहनते और फिर फोटो खींचते। कल्पना भी तो कर सकते हैं, मैं पहना हूं, पहनी हूं। स्थूल शरीर को इन्वॉल्व करना है, हर सूक्ष्म क्रिया के साथ जब शरीर इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों विकार इतने गहरे हैं, क्यों काम विकार निकलता ही नहीं? क्योंकि काम विकार का संबंध शरीर के तल पर हो रहा है, इसलिए उसकी जड़ें इतनी गहरी है। और जो पुरुषार्थ किया जा रहा है केवल मन के तल पर किया जा रहा है, शरीर को पूरा छोड़ दिया है हमने। हमें शरीर को देखना है पहला, शरीर को जानना है दूसरा, शरीर को महसूस करना है, और शरीर को साक्षी भाव से समझना है। ये चार चीजें शरीर के साथ करना है। इसका मतलब ये नहीं हम शरीर को, शरीर में आसक्त हो रहे, जो अनित्य है उसको देखना है इसलिए ताकि नित्य की ओर जा सके। जो क्षणभंगुर है उसको इसलिए देख रहा कि ताकि इसकी सत्यता को समझ सके, क्यों इतना इसमें आकर्षण है, क्या है इसमें ऐसा। अभी तो हमने जो अभ्यास किया ये ऊपर ही ऊपर अभ्यास था, केवल ऊपर से देह को देखा। जैसे ये अभ्यास गहरा होता जाएगा इस शरीर को अंदर से भीतर से देखना चालू करेंगे, इस श्वास को देखने चालू करेंगे, और धीरे धीरे इसकी जो जड़ें हैं वो हिलने लगेगी, फिर और कुछ होगा, एक क्रांति होगी, शॉक लगेगा। और जब तक शॉक नहीं, जब तक क्रांति नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं। इसके अतिरिक्त तो जो कुछ किया जा रहा है केवल और केवल वाणी और बुद्धि का विलास है। जो डायरिया हम भर रहे हैं वो पड़ी रहेगी ऐसी, जो ऑडियोज डाउनलोड कर रहे हैं वो वैसी ही पड़ी रहेगी, परिवर्तन नहीं लाएगी वो। इसके लिए तो त्याग चाहिए। इसलिए दूसरी चीज जोड़ने के लिए चाहिए वो कोई भी चैन नहीं, और सारी सलाखें हमने खुद तैयार की है। यदि हम देखें कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख कौन दे रहा है, ये व्यक्ति दे रहा है, क्या वास्तव में वो व्यक्ति दे रहा है? वो नहीं दे रहा है, मेरा उससे जो मोह है वो दुख दे रहा है। और हम कहेंगे मेरा तो कोई उससे मोह नहीं है, निगेटिव मोह, पॉजिटिव मोह कुछ तो है। इसीलिए तो इस भट्टी में यहां बैठे बैठे ही वहां क्या चल रहा है अपने जीवन में उसको देखना है। इस भट्टी में यहां बैठे बैठे पिछले 6 मास में, पिछले 1 साल में वहां क्या हुआ, पूरा 2020 क्या किया, एक एक मास का अवलोकन करना है, एक एक मास को याद करना है। पिछले मास जनवरी में क्या किया था, फरवरी में क्या किया था, कब कब विकार आए, क्यों आए, कैसे आए, कौन सी घटनाएं घटी, कौन से विघ्न आए, और कब हम गिर गए नीचे धड़ाम से, और उठने को कितना मुश्किल था, क्यों अमृत वेला नहीं हो पाया, क्यों मुरली का चिंतन नहीं हो पाया, क्यों 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 पूछना है और उसको साक्षी होकर देखना है। बस ये भाग्य है कि नए साल की शुरुआत, और वो भी अव्यक्त मास, और वो भी 18 जनवरी के समय आप सब यहां है। सोचो ये जनवरी मास वो गंगोत्री है जहां से अव्यक्त प्रवाह बहेगा दिसंबर तक, वो बहाना है चेतना में, वो नदी अपने अंतस्करण में। इसलिए आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट बॉन्डेजेस दैट यू हैव एंड थ्रो देम असाइड। मेरा सबसे बड़ा बंधन कौन है, कोई व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, मित्र है, या ब्राह्मण परिवार से ही कौन है, कोई भी हो काट दो। जो भी अध्यात्म की और प्रगति में बाधा है, चाहे फिर वो कोई भी हो, कट इट एंड थ्रो इट असाइड। बुद्ध ने कहा था कभी, यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिल जाऊं अपने शिष्यों से तो मेरी गर्दन काट देना। क्यों, डू नॉट फॉलो मी, मैं भी बाधा बन जाऊंगा तुम्हारे मार्ग में। प्रेरणा ले लो सबसे पर मार्ग से हटा दो। इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, ये एक अकेले की यात्रा है अकेले की तरफ, यहां कोई भी साथी नहीं है। और ये तो अंतस्करण की यात्रा है, अंतस चेतना की यात्रा है। यहां कौन साथी किसका, कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन बीवी, कौन बच्चे, कोई कुछ भी नहीं, अकेले, नितांत अकेले हैं हम इसमें। बंधन तीसरा, पिंजड़ा। यदि पंछी पिंजड़े में बंद है तो उड़ नहीं सकता। हर आत्मा एक स्वभाव शिकंजे में बंद है, एक संस्कार शिकंजे में बंद है, उसको आइडेंटिफाई करना है इन 3 दिनों में। मेरा डीपेस्ट संस्कार, माय डीपेस्ट हैबिट, माय डीपेस्ट एडिक्शन कौन सा है, कौन सा वो एडिक्शन है जो हिला देता है मेरे ज्ञान योग को, कौन सा वो एडिक्शन है। सब कुछ कर लिया आज तक, जितने महारथी है सारों को प्रश्न पूछ लिए अपने, सारी मुरलियां पढ़ ली, पर वो उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि एडिक्शन अब भी है। जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, अर्थात अब भी हम उसके शिकंजे में हैं। वो कौन सा है, फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट बाद में होगी, ट्रीटमेंट को छोड़ दो अभी, पहले तो निदान। ये है, ये जिसे मैं मैत्री कह रहा हूं, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, दैट इज बट अ ट्रेस ऑफ विशियस फ्रेंडशिप। वो मैत्री है ही नहीं आध्यात्मिक, वो तो कुछ और ही है, उसके भीतर तो वासनाएं पनप रही है। ये तीसरी बात, आइडेंटिफाई यूअर एडिक्शंस। वो क्या बन गए, पिंजरा बन गए सारे कुमार। क्यों, ब्रह्मचर्य साध नहीं रहा है। कौन सी बाधा है वो ब्रह्मचर्य में, अगर वो कोई भी बाधा है, स्टॉप इट, थ्रो इट, डिसेबल कर दो उस ऐप को, वट एवर इट इज, स्टॉप इट। संकल्प करके जाना है, रियल भट्टी तो यहां से जब जाएंगे तो चालू होगी। चौथा, पंछी को उड़ने के लिए चाहिए इच्छा शक्ति। मुझे उड़ना है, बहुत उड़ना है, आकाश में उड़ना है, गहराइयों को। ये तो अंतर आकाश है, उस आकाश में जाने के लिए भी स्ट्रांग विल पावर नीडेड, डिजायर। वो डिजायर क्रिएट करनी है अपने अंदर, मुझे अपने अंदर घुसना है। बस आज तक का जीवन, ब्राह्मण जीवन बाह्य मुक्ता में चला गया, सेवाएं की, पर वो सेवाएं सेवा थी ही नहीं। जो सेवा पुरस्कार मांगती है वो सेवा ही नहीं थी, वो तो स्वार्थ था जिसको सेवा का लेबल हमने लगाया था। इन तीन दिनों में यहां बहुत सारे प्रवचन सुनेंगे, बातें सुनेंगे, महारथी योगी पुरुष यहां आएंगे, बैठेंगे, कुछ सुनाएंगे, वो जो कुछ बोलेंगे दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है मौन का, उसमें आपको अपने उत्तर मिलेंगे, उस बीच में नहीं। अगर उस एकाग्रता से बैठेंगे तो दो वाक्यों के बीच जो मौन का अंतराल होगा भाषण में, वहीं से तीर लगेगा चेतना में। केवल अगले तीन दिनों के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। बहो यहां पर, बहते रहो, स्ट्रॉन्ग विल, डिजायर चाहिए, वो इच्छा आप क्रिएट करनी है। कब तक लेके चलूंगा? पास्ट में कोई इवेंट हुआ है, 10 साल हो गए, कोई मर गया, उसकी याद अभी तक है। किसी ने धोखा दिया, उसकी याद अभी तक है। वर्तमान में कुछ कुछ चल रहा है, डिस्टर्बेंस, वो लेके चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? पुरुषार्थ तभी किया जा सकता है जब मन नितांत हल्का है, कोई बोझ नहीं है उसको, अतीत का ना भविष्य का। उस हल्केपन को हमको यहां महसूस करना है, सुनते 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 ही अनुभव करना, ये मेरे साथ हो रहा है। बहुत लिख लिया, लिखना बंद कर दो, बाद में सब मिल जाएगा, सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। यहां तो अनुभव करना है, बैठे बैठे ही अनुभव करना है, सुनते सुनते ही अपने ही जीवन की यात्रा करनी। अभी भी यहां सुनते सुनते ही कानों में शब्द पड़ रहे हैं, परंतु यात्रा अपने जीवन की हो रही है। शब्द यहां से आ रहे हैं, दिखाई वो दे रहा है, और अचानक ऐसी कुछ चीजें दिखाई देगी और तुरंत परिवर्तन होगा। जो पॉइंट समझ ही नहीं आ रहा है वो समझ आ जाएगा। एक भूल जो हम किए जा रहे हैं वो पकड़ में आएगी। यू हैव कम हियर फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। अगला, करेज। क्या चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अंतर जगत में क्या है हमें कुछ भी पता नहीं है, कितने जन्म जन्म का वहां स्टोर्ड है। पर हिम्मत करनी है, और वो हिम्मत यहां मिलेगी। अमृत वेला बाबा से वरदान ले लो, विजयी भव। एक आदत है, अमृत वेला हो गया कि सो गए, इस आदत को यहीं छोड़कर जाना है। अभी समय है, जो जो हमें हम चाहते हैं किसी तीव्र पुरुषार्थी में हमको दिखाई दे रहा है कि ये हम में होना चाहिए, उस आदत को नोट करके रखो माइंड में या तो डायरी में, और यहीं पर इसी भट्टी में संकल्प करके जाएंगे कि मुझ में ये आदत है, मुझे इसको यहीं छोड़कर जाना है और न्यू हैबिट्स कल्टिवेट करके जाना है। यहां बैठकर वहां क्या करना है फ्यूचर में, उसकी प्लानिंग करनी है। 6 मास क्या हुआ उसका चिंतन, और 6 मास यहां से जाकर उस ऑफिस में, उस सेंटर में, उस घर में क्या करना है उसकी प्लानिंग यहां करके जाना है, तो ये भट्टी सफल होगी। यहां से देखना है अपने ऑफिस को, मैं किस तरह एंट्री करता हूं, किस तरह काम करता हूं, ट्रैवलिंग किस तरह का है। देखना है अपनी यात्रा को, ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से, समर्पित जीवन की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से, भोजन की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से, इंद्रिय विजय की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से, शारीरिक की बीमारियों की यात्रा कैसी रही ज्ञान में आए तब से, जब से ज्ञान में आए तब से कितनी बीमारियां आई देह की, क्यों आई, कब आई, कौन से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, कहां संयम की कमी है, उस यात्रा को देखना, संबंधों की यात्रा को देखना, इस ब्राह्मण परिवार में संबंधों में जो खींचातान है, कड़वाहट है, क्यों और कहां और कैसी, ये भट्टी का उद्देश्य है देखना, टू सी इनसाइट। करेज चाहिए इसमें। अगला, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, मुझे समझना है, इनक्विजिटिवनेस, जैसे बच्चे में उत्कंठा होती है, हर चीज जानने की उत्कंठा होती है, हर चीज उसे समझना होता है। हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा है, हम कभी रुके ही नहीं। समझना है एक एक चीज, एक एक भाव, एक एक भावनाएं, एक एक इच्छा जो उत्पन्न हो रही है, फ्रॉम विच बेड ऑफ सबकॉन्शियस इट इज अराइजिंग, सबकॉन्शियस के किस तल से, अवचेतन के किस गहराई से वो निकल आ रही है, उसका संबंध कौन सी दूसरी इच्छा से है, क्यों अब भी दुख है, दुखस्य कौन कारणम। कितना मौन चाहिए इस कार्य के लिए, काम बहुत बड़ा है और यहां आकर बातों में लग गए, इसको उसको देखने में लग गए, खान पान में लग गए, तो ये काम रह जाएगा, जैसे आए थे बस खाली हाथ ही लौट जाएंगे और केवल एक समाधान और वहां सेंटरों पर जाकर सुनाएंगे, हमने ऐसी भट्टी की और हमने याऊं किया और त्याऊं किया और यहां ये भी क्लास हुई और वो भी क्लास हुई, पर अंदर क्या, खाली, जस्ट एक दिखावा, दैट्स इट, क्यूरियोसिटी। अगला उत्साह, उमंग, जैसे उन चीजों में उमंग उत्साह है, अब इस चीजों में उमंग उत्साह लाना है कि मुझे अंदर की सफाई करनी है, बहुत कचरा जमा कर रखा है, हर दिन कचरा जमा हुआ है, विचारों का कचरा, संस्कारों का कचरा जमा हो गया है, एडिक्शंस का कचरा जमा हो गया है, पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर हटाना है। जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसका अपने आप ही हट जाएगा, जब पता चल जाए ये व्यर्थ है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से इतना मोह, इतना मोह, इतना मोह, रह नहीं सकते, दोनों ज्ञानी है, दोनों तपस्वी है, दोनों राजयोगी है, दोनों टीचर्स है, दोनों दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं, दोनों अमृत वेला में पक्के हैं, दोनों मुरली में पक्के हैं, फिर भी मोह है। अगर ऐसा है कौन किसको ज्ञान सुनाएगा। परंतु जब ये समझ में आ जाए कि यह संबंध ही व्यर्थ है, तो वैराग अपने आप आ जाएगा। वैराग उत्पन्न करने की विधि है चीजों की व्यर्थता को जानो। इस देह से वैराग उत्पन्न की विधि है, इस देह को ही समझो, ऊपर से नीचे तक की यात्रा करो, क्या है इस देह में, मल मूत्र के अतिरिक्त क्या भरा है इसमें, देखो उसको, देखो, शमशान घाट पर जाओ, बीच बीच में देखो जलती चिता को, ये है, जल रही है, आग की लपटें उठ रही है, दिस इज ट्रुथ। वो जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, ये जो सुंदर दिख रहा है शरीर, इस खाल को उखाड़ कर देखो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना आकर्षण किस लिए, क्यों, दबन नहीं करना है, डोंट सप्रेस कि इसको मुझे देखना नहीं, उसको मुझे देखना नहीं, इसको मुझे देख, देखो और सत्यता को देखो, तो वैराग आएगा, रियल वैराग जो कभी नहीं जाएगा, क्यूरियोसिटी। अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या चाहिए उड़ने के लिए, स्वयं में विश्वास, मैं कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं, और अभी तो कर ही सकते, इतने सारे ब्राह्मणों का संगठित योग बल मेरे साथ है, मधुबन की पावन भूमि पर है, यहां हो सकता है वो कार्य जो वहां नहीं हो सकता, वो यहां होगा, संकल्प की आवश्यकता है बस, परिवर्तन संकल्प की दूरी पर है, परिवर्तन संकल्प की दूरी पर है, वो जो मैं करना चाहता था अब तक नहीं हो रहा है, अभी यहीं बैठे बैठे वो संकल्प कर लो, और सब गुप्त होगा, ये सारा कार्य गुप्त है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सारा ऑपरेशन अंदर चल रहा है, एक एक को फाड़ना है चीरे से, क्या है, डेब्रीज, स्लफ, डेड बॉडीज, सब कुछ, सारा गंदगी जब तक निकलेगी नहीं वुंड से, वो वुंड में हीलिंग नहीं होगी। अभी तक 10 साल पहले किसी ने कुछ किया, उसका हर्ट है, क्योंकि इतना सब समाया हुआ है, क्या करते हैं ड्रेसिंग करते समय, सलाइन डालते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं, यूसॉल डालते हैं, सब क्लीन करते हैं पहले, फिर जब रेड हो जाता है, दैट्स हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू, तब कहीं हीलिंग स्टार्ट होती है, जब उसमें इतना कचरा है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है, वो दब गया है। कोई एक माता है, उसके पति ने शरीर छोड़ा, दुख तो उसको बहुत हुआ, परंतु ब्राह्मण परिवार के सामने रोएंगी कैसी, उसकी जो इमेज है योगी की वो उसे मेंटेन करनी है, नहीं रोई, दबा के रख दिया अपने दुख को, दिखाया कि कुछ नहीं हुआ मुझे, वो आत्मा थी चली गई। पर अब 2 साल हो गए, अभी भी ओपीडी में आना चालू है, उदास, रात रात भर नींद नहीं आती है। पर स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं है कि दुख हुआ है। अच्छा होता रो लिया होता तो, कैथारसिस हो गया होता, निकल गया होता सारा अंदर का, दमन कर दिया। ऐसा अध्यात्म नहीं होता है। जिसने दमन कर रखा है किसी भी चीज का, वो विस्फोट होगा एक दिन, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार हो, कुछ भी हो। तो स्वयं में निश्चय, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं। कोई एक ने अगर किया तो दूसरा भी कर सकता है। इफ इट इज पॉसिबल फॉर वन, इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। उसने किया तो मैं भी करूंगा। कोई एक अमृत वेला जल्दी उठ सकता है, फिक्स टाइम में उठ सकता है, जरा भी 5 मिनट इधर उधर नहीं होते उसके, चाहे सोता कितने भी बजे, फिर भी ये एक गुण है उसमें। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। संकल्प करके जाना है यहां से, आज के बाद इस ब्राह्मण जीवन का एक भी अमृत वेला मिस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी बच जाए, चाहे कितने भी टेम्पटेशन आ जाए। ऐसा कई बार हुआ हमारे साथ ही, हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, कई बार इमरजेंसी 12 बजे आती है, 2 बजे तक चलती है, ये करो वो करो, वेंटिलेटर पे डालो, ऐसा करो वैसा करो, मास कैजुअलिटीज, 2:30 बज गए, 3 बज गए, अब क्या करे, सो जाऊं या उठूं, कितना बड़ा प्रश्न है। मन कहता है सो जाओ, काम किया ना सो जाओ, पर संकल्प कहता है नहीं, नहीं सोऊंगा, सोऊंगा पर 5 बजे सोऊंगा, अभी नहीं। मन जैसा कहेगा शरीर का वैसा करेगा, और फिर भगवान भी मदद करेगा, भगवान भी मदद करेगा। हमें याद है एक बार हम यहां से कहीं गए थे बाहर, ट्रेन में थे, बहुत समय पहले की बात। हमारी आदत थी कि बाबा की कुटिया का दरवाजा हमें खोलना है सुबह 2 बजे, हम ही खोलेंगे उसको, अर्थात 1:30 बजे उठना है, 2 बजे से पहले तो पहुंचना है, और साधन पैदल पीछे से अंधेरी रात में। हम यहां से कहीं गए, ट्रेन में थे, अलार्म लगाना शायद भूल गए थे, और ट्रेन रुकी, या हमारी आंख खुली, आंख खुली तो देखा प्रकाश ही प्रकाश, हमें लगा हमारा अमृत वेला मिस हो गया। इतना दुख, दारुण दुख, ऐसे कैसे हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पर दिख रहा है ना, प्रकाश हो चुका है और मिस हो गया, अब क्या करें। हम सोच रहे, पर वो स्टेशन था, ट्रेन चालू हुई, आगे बड़ी, अंधेरा था, मोबाइल देखा 2:00, रात के सन्नाटे में तपस्या की जाती है। इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट, सिबिलेंस पता है इंग्लिश शब्द है, जो रात में आवाज आता है ना, इन द सिबिलेंस ऑफ द नाइट तपस्या इज डन। वहां परिवर्तित होता है चेतना में, वहां घाव लगते हैं अंदर ही अंदर, तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना है, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने स्पिरिचुअल स्टेमिना को बढ़ाना है, जैसे बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाते हैं, हर दिन बढ़ाते जाते, कल 3 सेट लगाए, आज 4, शुरुआत में 10, फिर 12, फिर 24, बढ़ाते जाते। शरीर की कोई लिमिट ही नहीं है, स्टैमिना इतना बढ़ जाता है, अभी अभी चेस्ट किया, अभी अभी शोल्डर्स, अभी अभी कोर, अभी अभी एप्स, अभी अभी लेग, रुकते ही नहीं वर्कआउट में, थकते नहीं, क्यों, स्टैमिना को इतना बढ़ा दिया है। ये स्पिरिचुअल मसल्स है आत्मा की, उसको एक्सरसाइज करानी है, जितनी कराएंगे वो होगा। अगला, उड़ने के लिए चाहिए एक डिवाइन कॉल जो अंदर से आएगा, अंदर से कोई पुकार सुने, एकांत में बैठ के और एक अभ्यास दे रहे, रोज सुबह सुबह अमृत वेले के बाद कोई ऐसे प्राकृतिक स्थान पर जाओ, आधा घंटा एक घंटा वहां पर बिताओ और वहां पर प्रकृति की जितनी आवाजें हैं उन आवाजों को सुनना, प्रकृति से दोस्ती करना। इंग्लिश में कहते हैं ट्री हगिंग, झाड़ को गले लगाना, उसमें पॉजिटिव ऊर्जा है। अपने ग्रीन टाइम को बढ़ाना है, दिस इज नोन एज ग्रीन टाइम। प्रकृति के साथ झरनों को देखो, पेड़ों को देखो, हमें तो लोकल के सिवा कुछ भी दिखने को नहीं मिलता, अब क्या करें ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई स्थान है जहां एकांत है, जहां मौन है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य है। ऐसे एकांत स्थान पर, ऐसे मौन के स्थान पर जहां मनुष्यों की आवाजें नहीं, वहां जाकर बैठना। कोई गार्डन हो सकता है, कोई छत हो सकती है, वहां जाकर योग का अभ्यास करना, वहां जाकर ज्ञान का चिंतन करना, वहां जाकर मुरली पढ़ना। कितना मन शांत हो जाता है। पिछले 10 सालों में इस आबू पर्वत की जितनी पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों पर बैठकर ही हमने ज्ञान का चिंतन किया है। अगर किसी कमरे में बैठ के किया होता तो माइंड ब्लॉक हो जाता है, हो नहीं पाता। जैसे ही आकाश में चला जाता है मन, घंटों घंटों, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, और जब संडे छुट्टी होता है तो कभी कभी तो 8 घंटा। इसलिए जो रात की मुरली रिविजन चलती है पांडव भवन में, ऐसा लगता है जैसे हम बोल ही नहीं रहे, कहीं ऊपर से आवाज आ रही है, क्योंकि वो आवाज हमारी नहीं है, मौन की है। इतनी पावर है उसमें। इंटरनल वॉइस सुनना है, वो सुनाई देगी प्रकृति के सानिध्य में। इंक्रीज योर ग्रीन टाइम, तब पंछी उड़ सकता है। उसके बाद उड़ने के लिए चाहिए लक्ष्य, एम। एम निर्धारित करके जाना है इस भट्टी में। यहां से जाने के बाद मेरा जो जीवन है, कुमार जीवन, कुमारी जीवन, ब्रह्मा कुमारी जीवन, अधर कुमारी जीवन, माता का जीवन, वो कैसा रहना चाहिए? यहां से जाने के बाद वो मैं नहीं रहूंगा, मुझे कुछ करके जाना है। डीप सर्जिकल स्ट्राइक, डीप सर्जिकल ऑपरेशन। केवल ये अच्छा था, वो अच्छा था, ये अच्छा अच्छा करके नहीं निकल जाना यहां से। एम। अगला प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के उड़ा नहीं जा सकता। अभ्यास तो यहां सीख लेंगे, पर यदि यहां से जाकर कुछ भी नहीं किया तो इसका प्रभाव 10 दिन तक चलेगा इस भट्टी का। बस 10 दिन के बाद जैसे थे, जैसे पहले थे, फिर यहां का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए और एक अभ्यास दे रहे, रोज एक बार 4 धाम की मन से यात्रा करनी है। किससे करेंगे? मन से। मधुबन में आना है मन से, टाइम फिक्स कर लो। नहीं होता है फिक्स तो कभी भी ऑफिस में बैठे हैं जस्ट रिलैक्स और आ जाओ शांति स्तंभ, और वहां जाकर क्रिया स्थान को क्रिया से जोड़ना है। शांति स्तंभ पर गए मन से, कुछ करके आना है वहां पर। वहां से कोई फूल ही उठा के लाना, या उसको हक करके आना, या उसकी परिक्रमा करके आना, कोई तो क्रिया उसमें जुड़नी चाहिए। हिस्ट्री हॉल में गए, देखो सभी ने हाथ रख दिया है पूर्वजों ने। कमरे में गए, बाबा ने अंगूठी पहना दी। कुटिया में गए, वहां कोई किताब ही दे दी, तुम्हारा अमृत वेला ठीक नहीं है, ये लो अमृत वेले की किताब पढ़ो, इसमें मेरे महावाक्य है। हाँ, एक काम करना, यहां से जाते समय जिनके पास अमृत वेले की किताब नहीं है वो लेके जाएंगे, जिन्होंने पढ़ी है वो रिपीट करेंगे, मस्ट। अमृत वेला जिसका नहीं हो रहा है, बाकी कितना भी कसरत कर लो दिन भर, कुछ नहीं। जो करना है वो सुबह ही करना होता है। प्रातः स्मरा मृदि संस्फुरदात्म तत्व सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम नच भांति भूत संगम। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये अनुभव तब होता है जहां चेतना केवल चेतना रह जाती है, शरीर है ही नहीं, ये अनुभव। एम, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के उड़ा नहीं जा सकता। और हमें तो अंदर जाना है, अपने अंदर उड़ना है, अपने अंदर की सच्चाइयों को जानना है, अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं को समझना है, देखना है क्या हुआ, कौन से दाग है, कौन से कलमश, कौन सी गांठें, कौन से संस्कार, कौन से एडिक्शन, कौन सी हैबिट्स। कितना बड़ा काम है, निरंतर अपने आप को याद दिलाते रहना, काम बहुत बड़ा है, काम बहुत ज्यादा है, मैं क्या कर रहा हूं, आया किस लिए था और क्या कर रहा हूं, ब्राह्मण किस लिए बने थे और क्या कर रहे हैं। सुबह उठना, अमृत वेला करना, एक्सरसाइज करना, फिर मुरली सुनने जाना, मुरली लिखना, मुरली की पॉइंट्स याद करना, रिवाइज करना, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना, फिर ब्रह्मा भोजन याद में बनाना, याद में खाना, नुमा शाम का योग करना, दिन भर सेवा करना, रात को चार्ट लिखना और सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहा जाता है? साधारण पुरुषार्थ। हमें करना क्या है? तीव्र। तो क्या करना पड़ेगा? इसको डबल कर देना पड़ेगा, इंटेंसिटी को बढ़ानी पड़ेगी इसकी। एक काम और दे रहे सबको, यहां से जाते समय एक डायरी खरीद के जानी है और उस डायरी में रोज की अपनी दिनचर्या लिखेंगे, क्या हुआ। ऊपर डेट होगी 16 तारीख जनवरी मास 2021, कहां है ज्ञान सरोवर माउंट आबू। चालू करेंगे, आज सुबह कितने बजे उठा, अमृत वेला, फिर कहां गया, फिर कहां गया, केवल दिनचर्या, याद का चार्ट नहीं कह रहे, केवल दिनचर्या लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ये हुआ, रोए तो वो भी लिख दो कि आज मैं बहुत रोई, इसने आज मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, केवल लिख देना। ये डेटा एंट्री है, एनालिसिस बाद में करेंगे, और लास्ट में बाबा गुड नाइट, बस। ये रोज की डायरी, सब कुछ लिख देना उसमें, अगर डर लगता है कोई पढ़ ले तो कोड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, किसी के हाथ में चली जाए अगर लगता है डर तो कोड लैंग्वेज एक्स वाई जेड लिखो, हमें तो पता है ना वो एक्स वाई जेड कौन है, जिसने आज ही रुलाया। हर संडे रिव्यू एनालिसिस, ये डेटा एंट्री कर लिया मंडे से सैटरडे, संडे खोलो, अब पता चलेगा अरे ये कोई रोने की बात थी, सच ए स्मॉल थिंग, क्योंकि हम दूर हो गए, अभी घटना से दूर हो गए, टाइम इज द हीलर, उससे डिटैच हो गए, अर्थात जब घटनाएं घटती है उस समय यदि प्रतिक्रिया ना दी जाए तो उसका जो प्रभाव तब हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। ये बातें समझ में आने लगेगी कुछ कुछ, अपने ही मन को हम समझने लगेंगे कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। कोई किसी ने गलती की, किसी को काम दिया, उसने गलती की नहीं किया, हमने उसे डांटा, पर क्या वो सुधरा? नहीं सुधरा, फिर से वो गलती करता है, फिर से हम इरिटेट होता है, एक व्यक्ति हमें बार बार इरिटेट करता है, एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड, व्हाई, लेट मी अंडरस्टैंड हिम, क्या है ये, कुछ तो है हम दोनों के बीच, कुछ गहरी बातें हैं जो समझ में आने लगेगी, सच्चाइयों को हम पकड़ने लगेंगे धीरे 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 धीरे, फिर धोखे कम होंगे। अभी जितने आंसू आते हैं, डायरी में लिखा चार बार तो रोए एक हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते में तीन बार, फिर दो बार, और कोई ना कुछ तो कहेगा ही, कांटे लेकर तो बैठे ही ये लोग, कांटों का जंगल है, तो मुरली क्लास पूरी हुई दरवाजे पर ही कांटे लेकर है कोई, ब्राह्मण परिवार का ही चुबाने के लिए, कितना मजा आता है, सारे पेपर्स तो यही चालू होते, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण परिवार ही परीक्षा गृह है, एग्जामिनेशन हॉल, एंड एवरी ब्राह्मण इज अ पेपर, हर ब्राह्मण आत्मा पेपर है, पता नहीं कब किससे पेपर आ जाए, अभी तक तो इतना अच्छा था, दोस्ती थी, साथ में चल रहे थे पुरुषार्थ में, आज अचानक उसने छोड़ दिया, क्यों, अचानक से धोखा, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड, द टेंडेंसीज ऑफ माइंड, द संस्कार्स ऑफ माइंड, द नेचर ऑफ अदर्स, द नेचर ऑफ ब्राह्मिन फैमिली, द नेचर ऑफ कार्मिक अकाउंट्स, ये सब कैसे और किस सूक्ष्म रीति से चल रहा है, सब कुछ। तो हमें उड़ान भरनी है अंदर, इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी है, ये जो अभ्यास बताया वो कभी दोपहर में कभी रात को, और एक अभ्यास दे रहे योग निद्रा, हम लोग रोज दोपहर को करते हैं, सबको लिटा के, पांडव भवन में एक जगह है ऊपर ओम शांति भवन के पीछे गार्डन विथ कॉमेंट्री, क्योंकि यदि आप सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना है, वन ऑफ द मेथड्स इज योग निद्रा, जहां चेतन मन को शांत किया जाता है, शरीर को शांत कर दिया जाता है, श्वास को शांत कर दिया जाता है, और फिर मैं आत्मा हूं, और फिर विजुअलाइजेशन, एंड देन कम बैक एंड रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस. 7-8 स्टेजेस है उसकी. क्योंकि सुना बहुत है, अब करना बाकी है. ड्रिल जो भी करो वो ड्रिल हो, वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे कि ये मैं कर रहा हूं, तो ही उसका. यहां से पांडव भवन गए, घूमे, चार धाम आ गए, हाथ में कुछ भी नहीं. कुछ करना है वहां जाके, कुछ स्मृति, कोई काम, कोई क्रिया जोड़ के आना है ताकि वो अविनाशी हो जाए. तो ये अंतर जगत की यात्रा है. फिर सभी स्थिर बैठेंगे, अलर्ट, एकदम एकाग्र, और जैसे कहा इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है. एक नजर अपने जीवन यात्रा पर, बचपन से अब तक क्या हुआ, कौन कौन सी यात्राएं की, गांठें कब बांधी गई, संस्कार कैसे और कब निर्माण हुए, एक क्विक अवलोकन. अब मैं जहां हूं, जिस स्थान में हूं, जिन लोगों के बीच हूं, ये स्थान कैसा है, जीवन कैसा है, दिशा और दशा कैसी है, पुरुषार्थ किस ओर जा रहा है, एक स्क्रीन पे दिख रहा है सूक्ष्मता से, इसको देखना है. मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी, सबसे गहरा एडिक्शन कौन सा, और संकल्प है जब तक इसे नष्ट ना कर दूं, मेरी ये भट्टी पूरी नहीं होगी. इस भट्टी में 3 दिनों में मुझे तपना है, केवल तपना है, अंतर आकाश की यात्रा करनी है, स्वयं को जानना है, ताकि उस बाप को प्रत्यक्ष कर सकूं. ओम शांति.